अब हम प्रारंभ करते हैं नए विषय का स्वाध्याय। आज शारदा पक्ष से यह स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। माता सरस्वती की कृपा प्रसाद से आप सभी को खूब अच्छे से ज्ञान की प्राप्ति हो, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि इसी से अपना कल्याण संभव है। जब हम जानेंगे कि जीव किस प्रकार से तीनों लोकों के अंदर 84 लाख योनियों में चार गतियों के माध्यम से कैसे परिभ्रमण कर रहा है और उससे कैसे छूटा जा सकता है, किस गति से किस गति में जाना संभव है, कौन सी गति से हम आते हैं और किस प्रकार के परिणामों को करते हैं, अत्यंत उपयोगी ये स्वाध्याय है। और आप सबको पीडीएफ के माध्यम से पूरा कोर्स भेजा गया है, यानी पूरी पुस्तक का मटेरियल भेजा गया है, इसलिए सब लोग अच्छे से स्वाध्याय करेंगे। तो प्रारंभ करती हूँ आज से गतियों से आने जाने के द्वार। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारम्भम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। द्वादशांगमयी सरस्वती माता की वरदायिनी छाव में और सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की छत्र छाया में हम बैठ करके आप तक ये विषय पहुंचा रहे हैं। पूज्य माता जी ने षट खंडागम, गुमट सार, लब्धि सार, छपना सार आदि ग्रंथों का निचोड़ छोटी सी पुस्तक के माध्यम से रखा है। पुस्तक छोटी, सामग्री बहुत बड़ी, और उसके स्वाध्याय से आप सब का हृदय झंकृत हो जाएगा, रोम रोम सिहर जाना चाहिए कि हम अनादि काल से न जाने कितने गतियों में दुखों को उठाते हुए आज बड़े ही महान पुण्य कर्म के उदय से मनुष्य गति में जन्मे हैं। और उस मनुष्य पर्याय का मूल्यांकन कैसे करना है ये आप समझिएगा, और एक एक पंक्ति इसके अंदर जो है याद करने लायक है, कंठस्थ करने लायक है। प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले है गति का लक्षण क्या है, गति माने क्या होता है। भवान तरा वापती गति, यानी एक भव को छोड़कर दूसरे भव के ग्रहण करने का नाम गति है। एक जन्म से निकले, वहां से मरण को प्राप्त हुए और दूसरी गति में जाकर जन्म धारण किया, बस इसका नाम है गति। और गति के चार भेद हैं, सबको मालूम तो है ना, गति के चार भेद हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। एक एक गति से आने के और उसमें जाने के कितने द्वार हैं ये बात इसके अंदर आपको जानना है। आप छह डाला के अंदर पढ़ते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखिते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार कहें सीख गुरु करुणाधार। भले ही पंडित दौलत राम जी की लिखी हुई ये छड़ाला है, लेकिन इसकी एक एक पंक्ति के अंदर उन्होंने इतना सार भरा है कि छड़ाला बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ और साधु जन भी इसको पढ़ते हैं। अच्छी चीज है, तो अच्छी चीज को ग्रहण करने में किसी को भी कोई कठिनाई नहीं होती और कोई दुर्लभता की बात नहीं है। कहा कि तीन लोक के अंदर अनंत जीव हैं। तीन लोक कौन कौन से हैं, अधोलोक, मध्य लोक और ऊर्ध्व लोक। इन तीनों लोकों के अंदर त्रस और स्थावर जीवों को मिलाकर के अनंत जीव हैं, और सबके सब जीव सुख चाहते हैं, दुखते ही भयवंत, दुख से डरते हैं। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है कि दुख को चाहे और सुख से डर जाए। नहीं ना, सब लोग सुख चाहते हैं। मुझे आनंद की प्राप्ति हो, मुझे खूब धन मिले और मेरा स्वास्थ्य खूब अच्छा रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, इसके लिए रात दिन प्रयत्न करते हैं। इसलिए कहा कि ताते दुख हारी सुखकार। इसलिए दुख को हरण करने वाली और सुख को देने वाली कहें सीख गुरु करुणाधार। सीख माने शिक्षा, उपदेश, ये कौन करते हैं? ऐसी शिक्षा देने वाले गुरु होते हैं केवल। वे संसार के लोग कोई अपने परिवार का केवल हित चाहता है, दूसरे से कोई ईर्ष्या करते हैं, कोई द्वेष करते हैं। सबके अंदर ये भावना नहीं होती कि सारे प्राणी संसार के सुखी रहें, लेकिन एक संसार में गुरु ऐसे हैं जो करुणा की मूर्ति होते हैं और वो शिक्षा देते हैं कि हे भव्य प्राणी, तू दुखों को सहन कर रहा है, अब सुख में कैसे जाए, इसके लिए वे शिक्षा प्रदान करते हैं। और वही शिक्षा विभिन्न माध्यमों से प्रदान की है। कभी प्रथमा नियोग के माध्यम से कहानी पढ़ो, देखो भगवान ऋषभदेव, भगवान राम किस प्रकार जन्मे, उनका जीवन कैसा रहा, कैसी सहनशीलता रही, कैसे कष्ट उन्होंने सहन किए, कहाँ सहन किए। करुणा नियोग के माध्यम से कैसे चलते हैं मोक्ष मार्ग पर और कैसे आज संसार मिथ्या मार्ग पर चल रहा है, इन सब को बताने वाला चरणा नियोग है। और द्रव्या नियोग, आत्मा में रमण करो, जीव भिन्न है, उद्गल भिन्न है, आत्मा और शरीर की भिन्नता को बताने वाला द्रव्यानुयोग। इन चार अनुयोगों के माध्यम से हमारे गुरुजन सुख का मार्ग बताते। और उन्हीं गुरुजनों में वर्तमान में 20वीं 21वीं सदी की प्रथम बाल योगिनी के रूप में, प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी आरिका के रूप में गणी ज्ञानमती माता जी के इस समाज पर अनंत उपकार हैं। क्योंकि 100 200 400 साल के अंदर कोई बाल ब्रह्मचारिणी आरिका का नाम नहीं सुना जाता था। ग्रंथों के अंदर ब्राह्मी सुंदरी चंदन बाला अनंतमती नारिकाओं के नाम आते हैं, लेकिन वर्तमान में नहीं सुने जाते थे। कोई परित्यक्ता होती थी, कोई विधवाएं होती थी, वे दीक्षा धारण करती। ज्ञानमती माता जी एक ऐसी माता है जिन्होंने हम सब बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाओं के मार्ग को प्रशस्त किया। और इतना ही नहीं किया, उन्होंने खूब ज्ञान शास्त्र के समुद्र से मोती निकाल निकाल करके अपने हृदय में भर लिए और उस ज्ञान का लाभ पूरे संसार को प्रदान कर रही हैं। ये तो मैं आपको बहुत छोटी सी पुस्तक पढ़ा रही हूं, लेकिन इन्होंने 600 लगभग ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ, संस्कृत की टीका, प्राकृत में रचना, कन्नड़ भाषा के अंदर रचना, संस्कृत से कठिन ग्रंथों के अनुवाद करके देना, ये सब किया। और उसके साथ भव्यात्माओं की भावनाएं हुई कि हमें संक्षेप में ऐसी चीजें पता लग जाएं कि हे माता जी, हम कैसे तो संसार में आए हैं और अब कैसे संसार से छूट सकते हैं। तो उस लक्ष्य को लेकर मुझे माता ने बताया। तो सबसे पहली गति है, चार गतियों में नरक गति बताई, इसलिए कि नरक में दुख है। जब तीन लोक के अंदर चलते हैं ना, तो सबसे पहले अधोलोक आता है। और उसमें जब कभी आपने हस्तिनापुर में देखा होगा, अब यहाँ अयोध्या में भी तीन लोक की रचना बन रही है, उसके अंदर जब जाएंगे सबसे पहले अधोलोक आता है। अधोलोक में सबसे नीचे निगोद होता है, जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं। उसके बाद सातवां नरक, छठा नरक, फिर पांचवा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, ऐसे करके नरक देखते हैं। तो नरक गति के दुखों को वहां देख करके मन के अंदर भावना आती है कि भगवान हम कौन सा प्रयत्न करें जिससे नरक गति से छूट जाएं। तो सबसे पहले नरक गति से आने जाने के द्वार, बहुत ध्यान से सुनना, नरक गति से आने के दो द्वार हैं। क्या? नरक गति से आने के दो द्वार हैं और नरक गति में जाने के भी दो द्वार हैं। सभी लोग समझ रहे हैं, नरक गति से आने के भी द्वार हैं और नरक गति में जाने के भी दो दरवाजे हैं, दो द्वार हैं, तो एक मनुष्य गति, एक मनुष्य और द्वितीय तिर्यंच, अर्थात मनुष्य या तिर्यंच ही मर करके नरक गति में जा सकते हैं, समझे ना। कौन जाएंगे? देवता नहीं जा सकते नरक में, और नारकी मर करके नरक में नहीं जा सकता। तो बच्ची अपने पास दो गति, तो मनुष्य नरक में जा सकता है और तिर्यंच माने पशु नरक में जा सकता है। तो क्या हुआ कि मनुष्य या पंचेंद्री तिर्यंच ही मरकर नरक गति में जा सकते हैं, तथा नरक गति से निकलकर जीव मनुष्य या पंचेंद्री तिर्यंच ही हो सकते हैं, अन्य गति में नहीं जा सकते। ये एक नियम बता दिया जो हमारे तीर्थंकर भगवान ने अपने केवल ज्ञान के द्वारा देखा तो उसको बताया। चार गतियों में सबसे पहले नरक गति के बारे में जाने कि नरक कौन जाएंगे, मनुष्य या पशु। मनुष्य गति तो ऐसी है कि चारों गतियों में जाने के लिए उसके लिए मार्ग खुला है, चयन कर सकते हैं। जैसे कोई चौराहे पर खड़ा हो, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी चारों तरफ जा सकता है, जिधर उसकी इच्छा है। लेकिन नरक गति में जाने के लिए नियम है कि कोई मनुष्य या पंचेंद्री तिर्यंच ही नरक में जाएगा, और जब नरक से निकलेंगे खूब दुख भोग करके, हजारों लाखों साल की आयु को बिता करके जब कोई नरक से निकलते हैं तो वे कहाँ जाते हैं? नरक से निकल करके देवगति में नहीं जा सकते, और नरक गति से ही चूंकि निकलते हैं तो वापिस नरक में भी नहीं जा सकते। तो नरक गति से निकलेंगे तो या तो मनुष्य की पर्याय पाएंगे और या फिर पशु की पर्याय में आएंगे। अगर नरक गति में जाना भी है उनको तो एक गति बीच की मनुष्य तिर्यंच की लेनी ही पड़ेगी। ये आपको आज नियम बता दिया सबसे पहला, इसकी डिटेल और आगे चलते हैं कि कैसे कैसे। तो क्या जाना कि नरक गति में कौन जाएंगे, मनुष्य या पशु तिर्यंच, और नरक गति से निकल करके नारकी कौन सी गति में जाएंगे, या तो मनुष्य बनेंगे या पशु बनेंगे। तो ये पहला एक नियम आपने जान लिया। आप समझिएगा, असैनी पंचेंद्री तिर्यंच पहले नरक तक ही जा सकते हैं, इससे नीचे नरकों में नहीं, क्योंकि वे मन के बिना इतना अधिक पाप नहीं कर सकते। अब देखो नियम की बात है, पाप और पुण्य दो चीजें हैं। कह रहे हैं असैनी, असैनी पंचेंद्री का मतलब क्या है, इंद्रियां तो पांचों हैं, लेकिन जिनके पास मन नहीं है, पंचेंद्री बन गए लेकिन मन नहीं है, तो ऐसे पशु होते हैं। मनुष्यों के तो मन रहता ही रहता है। असैनी तिर्यंच जो है वे नरक में जाएंगे तो कहां तक, पहले नरक तक, इसलिए कि बिना मन के कोई बहुत बड़ा पाप नहीं कर सकता, इतना ही पाप कर सकते हैं वे कि पहले नरक तक। पहले नरक भी कोई कम नहीं है, वहां हर दम मार धाड़ चलती रहती है। तहां नरक पर सत दुखई सो, बिच्छू साहस डसे नहीं तिसो, तहां राधि शोणित वाहिनी, क्रमि कुल कलित देह दाहिनी। ऐसा नरक है और सातों नरक में, और खूब वेदना बढ़ती जाती है। नरक सब एक से हैं, लेकिन वहां वहां की आयु, अगर पहले नरक में जाएं कम से कम आयु मिले तो 10 वर्ष सहस्त्राणि प्रथमायाम, कम से कम पहले नरक की आयु कितनी है, 10,000 वर्ष। क्या होते हैं 10,000 वर्ष? आज मनुष्य गति में किसी को 50 साल से 100 साल की भी उम्र मिल गई, 100 साल की उम्र किसी की हो गई, बहुत मानते हैं। उतने में ही व्यक्ति कभी कभी इतना परेशान हो जाता है कि सोचता, हे भगवान मुझे क्यों नहीं उठा लेता। और जहां दुख ही दुख है और वहां कम से कम 10,000 साल की आयु हो, तो आप सोच सकते हो कि वह जीव कितना दुखी रहेगा और कितने दिन तक लगातार दुख सहेगा। तो जो ये बताया कि तिर्यंच जीव ही मर करके नरक में जा सकते हैं, उसकी डिटेल में हमें समझना है कि असंगी पंचेंद्री पशु जो हैं वो मर करके पहले नरक तक जा सकते हैं, यानी वो मनुष्य भी हो सकते हैं, देवता भी हो सकते हैं, लेकिन अगर नरक में जाएंगे तो वो पहले नरक तक ही जाएंगे। उसका कारण क्या दिया है कि वो मन नहीं होने से इससे ज्यादा पाप आगे के नरकों तक, दूसरे तीसरे नरकों तक जाने का पाप नहीं कर सकते। ये नियम हो गया। एक एक लाइन के अंदर नियम भरा हुआ है, सिद्धांत भरा हुआ है। और आगे बताया कि सरीसृप तिर्यंच दूसरे नरक तक ही जा सकते हैं, इससे नीचे नहीं। सरीसृप का मतलब क्या है? जो कोई पानी में रहने वाले सांप होते हैं। अभी कल पता चला कितने 100 फीट है, 120 फुट का सांप प्रयाग के अंदर नदी में पाया गया, समझे? और नदी में या पानी में रहने वाले सांप को कहते हैं सरीसृप। तो वह सरीसृप जो है अगर मर करके, क्योंकि सांप भाई क्या करेंगे, उनका तो काम ही है किसी को डस लेना और उन्हें मार देना, यही काम होता है। तो उसके निमित्त से वो पाप इकट्ठा करते हैं। पाप के निमित्त से वे नरक में जाते हैं अगर, तो नरक में जा करके दूसरे नरक तक ही जाने की उनकी शक्ति है, यानी पहले में जाए या दूसरे, जो दूसरे में जाएगा तो पहले में तो जा ही सकता है। ये दूसरा नियम हो गया कि दूसरे नरक तक कौन जा सकता है? पानी में रहने वाले सांप। मतलब ये नहीं है फिर कि पहले दूसरे नरक में और कोई जाते ही नहीं। यहाँ तिर्यंचों की बात चल रही है कि अगर असैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच पशु कोई मर करके नरक में गया तो पहले नरक तक ही जाएगा, और जल में रहने वाले सांप जो सरीसृप कहलाते हैं वे अगर नरक में गए तो वो दूसरे नरक तक ही जाएंगे, वे आगे के नरकों में, नीचे के नरकों में नहीं जाएंगे। उनके पाप की इतनी अधिकता नहीं है। यहाँ पापों के कारण बताते हैं नरक कौन जाते हैं। कोई पुण्य करने वाला नरक में नहीं जाता, बस वही जा सकता है पुण्य करने वाला, कि जिसने पाप करते समय पहले अगर किसी ने नरक की आयु बांध ली। समझो ये बात बहुत मार्के की है कि पुण्य करने वाला नरक में कौन जाता है, पाप करते समय किसी ने नरक की आयु बांध ली और उसके बाद उसने पुण्य किया। जैसे राजा श्रेणिक, उन्होंने मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला, उसी समय उनको नरक आयु का बंध हो गया, और उसके बाद महावीर स्वामी के समूह शरण में उन्होंने खूब पुण्य किया, भगवान की खूब भक्ति की, तो भी उनको नरक में जाना पड़ा, लेकिन वे पहले नरक में गए। तो आज मैंने आपको ये छोटे छोटे नियम बताए हैं गतियों से आने जाने के द्वार में, कि चार गतियां होती हैं और उनमें से पहली नरक गति में दो दो द्वार माने हैं, मनुष्य और तिर्यंच गति, और मनुष्य गति और तिर्यंच गति से ही आएंगे और मनुष्य और तिर्यंच गति में ही मर करके जाएंगे, इतना नियम है। और दो नरकों तक जाने वालों की योग्यता के बारे में प्रकाश डाला गया। ये आज के स्वाध्याय का यही सार समझना।